श्रीमद् भागवतम आठवां स्कंद शीर्षक देवताओं को स्वर्ग की पुनः प्रीति पुनर्प्राप्ति श्लोक क्रमांक 16। मंत्रतस्तंत्रतश्छिद्रं देशकालार्ह वस्तुतः सर्वं करोति निश्चिद्रं अनुसंकीर्तनं तव। अनुवाद। मंत्रों के उच्चारण तथा कर्मकांड के निर्वाह में त्रुटियां हो सकती हैं, देश काल व्यक्ति तथा सामग्री के विषय में भी त्रुटियां हो सकती हैं, किंतु यदि आपके पवित्र नाम का कीर्तन हो तो हर वस्तु त्रुटिहीन बन जाती है। तात्पर्य, श्री चैतन्य महाप्रभु ने संस्तुति की है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। इस कलह तथा दिखावे के युग में उद्धार का केवल एक ही साधन बचा है और वह है भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन। इसके अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता नहीं है, अन्य कोई रास्ता नहीं है, अन्य कोई रास्ता नहीं है। बृहन्नारदीय पुराण। इस कलयुग में वैदिक कर्म कांडों या यज्ञों को पूरी तरह से संपन्न कर सकना अत्यंत दुष्कर है। शायद ही कोई वैदिक मंत्रों का ठीक से उच्चारण कर सके या वैदिक अनुष्ठानों के लिए सामग्री का संग्रह कर सके। इसलिए इस युग के लिए जिस यज्ञ की संस्तुति की गई है वह संकीर्तन अर्थात भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन है। यज्ञ संकीर्तन प्रायई यजंति ही सुमेधस। जो लोग बुद्धिमान हैं, जिनके पास अच्छी दिमागी संपत्ति है, वे वैदिक यज्ञों को संपन्न करने में समय न गंवाकर भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करें और इस तरह यज्ञ को अच्छी तरह पूरा करें। मैंने देखा है कि अनेक धार्मिक नेताओं को यज्ञ करने एवं अपूर्ण यज्ञ की संपन्नता में लाखों रुपया खर्च करने की लत है। यह उन लोगों के लिए भिक्षा है जो ऐसे अपूर्ण यज्ञ व्यर्थ ही संपन्न करते हैं। यह उन लोगों के लिए शिक्षा है जो ऐसे अपूर्ण यज्ञ व्यर्थ ही संपन्न करते हैं। हमें श्री चैतन्य महाप्रभु से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। यद्यपि शुक्राचार्य कट्टर कर्मकांडी ब्राह्मण थे, किंतु उन्होंने भी स्वीकार किया है, निश्चिद्रम अनुसंकीर्तनम तव। हे भगवान, आपके पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन सब कुछ पूर्ण कर देता है। कलयुग में वैदिक कर्मकांड को पहले की तरह पूरी तरह संपन्न नहीं किया जा सकता, इसलिए श्रील जीव गोस्वामी ने संस्तुति की है कि यद्यपि आध्यात्मिक कर्म करते समय सभी सिद्धांतों के पालन में पूरी सतर्कता बरतनी चाहिए, विशेषतया दैव पूजा में, फिर भी कुछ ना कुछ त्रुटि रह सकती है। अतएव मनुष्यों को चाहिए कि वे इस त्रुटि को पूरा करने के लिए भगवान में के पवित्र नाम का कीर्तन करें। इसलिए हम अपने कृष्ण भावनामृत आंदोलन में सभी कर्मों में हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन पर विशेष बल देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्णा। आज का दिन बड़ा पवित्र दिन है, न केवल ये तिथि एकादशी है बल्कि वामन द्वादशी भी है, दोनों तिथियों का मिश्रण है आज। और आज श्री वामन देव जी का, जो भगवान के 10 अवतारों में एक माने जाते हैं, केशव धृता वामन रूपा जय जगदीश हरे जय देव गोस्वामी अपने भजन में लिखते हैं, और आज शिला जीव गोस्वामी जो हमारे चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख शिष्य षड गोस्वामियों से एक हैं, उनका भी आज आविर्भाव तिथि है। तो ये तीन तरीके से पवित्र है, एकादशी, श्री वामन द्वादशी और जीव गोस्वामी आचार्य की आविर्भाव तिथि। श्रील प्रभुपाद का ये आदेश था कि विष्णु के जो अवतार हैं उन अवतारों की दोनों ये दशावतार स्तोत्र जो है इनका स्मरण करें, जो जयदेव गोस्वामी के द्वारा रचित है, ये बहुत ही मंगलमय है। शृणु सुखदम शुभदम भवसारम, ये 10 अवतार के जो वर्णन है उनके कार्यकलाप, जन्म कर्म च में दिव्यम, भगवान के जन्म और कर्म दिव्य है, और खास करके ऐसे दिनों में ये दशावतार स्तोत्र का स्मरण करना, वर्णन करना। सुखदम शुभदम भवसार, सुखदायक है, मंगलदायक है, शुभदायक है और भवसागर को पार कराने की शक्ति रखती है। तो आज संक्षिप्त रूप से श्रील वामन देव की जो लीला है उसके बारे में चर्चा करेंगे। वामन देव की लीला श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद में आती है, जब महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न करते हैं कि मैंने सुना है कि भगवान एक अवतार वामन का लेकर उन्होंने भीख मांगा, भगवान भीख मांगे, कोई भिखारी भीख मांगता है तो ठीक है, भगवान भीख मांगते हैं तो भागवतम में आ जाता है। तो पूछ रहे हैं कि भगवान ने भीख मांगा, अच्छा भीख मांगा तो भीख मांगा, चलो ठीक है उनकी लीला है। बेचारा जिसने भीख दिया उसको बकड़ के बांधी बंदी भी बना लिया, एक तो भीख भी लिया उसको बंदी भी बना लिया, गलत बात है, ऐसा क्यों किया भगवान, बलि महाराज को बंदी क्यों बनाया उन्होंने, तो कृपया ये थोड़ा विस्तृत रूप से आप समझाइए, मैं सुनने की इच्छुक हूं। तो बलि महाराज की कथा वामन देव के प्रसंग में इसको विस्तृत से समझाते हुए कई अध्यायों तक जाता है, 6-7 अध्याय है भागवतम की। तो सुखदेव गोस्वामी ये वामन लीला का वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक बार जब असुर और सुरों की युद्ध हुई तो उस युद्ध में सुरगण जो इंद्रदेव के नेतृत्व में लड़ रहे थे उन्होंने आक्रमण करके न केवल शत्रुओं को हरा दिया असुरों को, बल्कि उनके जो नेता थे बलि महाराज, बलि महाराज को मार ही दिया जान से, बलि महाराज मारे गए। पर शुक्राचार्य की कृपा से जो जो लोग के अंग संपूर्ण नष्ट नहीं हुए थे उनके अंगों को जोड़कर शुक्राचार्य ने उनके पुनर्जीवित कर दी, उनके अंदर वो शक्ति थी। शुक्राचार्य बहुत ही शक्तिशाली थे, ज्ञानी बहुत ही शक्तिशाली थे, तो उन्होंने बलि के शरीर को वापस पुनर्जीवित कर दिया। तो बलि महाराज कृतज्ञ थे, जिस व्यक्ति ने मुझे जन्म दिया है, फिर से पुनर्जन्म दिया है, क्यों कैसे कृतज्ञ नहीं होंगे। तो बलि महाराज शुक्राचार्य के शिष्य बन गए और इस तरह से शुक्राचार्य को प्रसन्न किया बलि महाराज ने अपनी सेवा भाव से, और तत्पश्चात बलि महाराज ने अपना इच्छा प्रकट किया कि मैं तीनों लोकों को जीतना चाहता हूं, खास करके इंद्रलोक में तो उनको मैं हराना चाहता हूं। तो आप कुछ मुझे एक कुछ तरीका बताइए जिस तरह से मैं इसे जीत पाऊं। तो शुक्राचार्य जो भृगुवंश के थे, वो भृगु मुनि के वंशज के थे, उन्होंने कहा कि एक यज्ञ है जिस यज्ञ का नाम है विश्वजीत यज्ञ, और अगर वो यज्ञ करेंगे, संपन्न करेंगे यशस्वी तरीके से, तो निश्चित रूप से तुम जीत सकते हो, पूरे विश्व को जीत सकते हो। तो शुक्राचार्य की कृपा से बलि महाराज ने विश्वजीत यज्ञ संपन्न की, और उस यज्ञ में जब अंतिम आहुति डाली गई तो उसमें से एक सुंदर रथ निकला, सोने का रथ, पीले चमकते हुए इंद्र के घोड़े जैसे घोड़े निकले चार, एक सुंदर धनुष निकला और एक कवच निकला और दो जिसमें धनुष तीर रखते हैं, भाता मराठी मध्ये, हिंदी मध्ये काय, तर्कस, हाँ तर्कस, तो दो तर्कस निकले, इधर एक इधर एक। तो इस तरह से यज्ञ से जब ये सारी सामग्रियां आई तो बलि महाराज उस कवच को धारण किए, सुंदर हेलमेट, एकदम फर्स्ट क्लास कवच, और सब पूरे शरीर को ढका हुआ, और धनुष लिए हाथ में, दूसरे हाथ में तलवार था, और दोनों तर्कस दो बाजू में रखे दोनों कंधे पे, फिर उस सोने जैसे रथ पर सवार होकर, सुनहरे रथ पर सवार होकर वो तैयार हो गए। पहले सारे ब्राह्मणों की, अपने गुरु की परिक्रमा की उन्होंने, उनको प्रणाम किया, उनसे आशीर्वाद मांगा, और उनसे आशीर्वादित होकर निकलने के लिए तैयार हुए। तब वहां उनके दादाजी बलि महाराज के पिता थे विरोचन, विरोचन के पिता थे प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज वहां आए, उन्होंने उन्हें एक हार पहनाया जो कभी मुरझा नहीं जाते, ऐसे फूलों से बना हुआ हार, यानी उन्होंने भी अपना आशीर्वाद दिया। तो इस और शुक्राचार्य ने उन्हें एक शंख दिया अपने हाथों से, ये सब चीजों को धारण करके अब बलि महाराज सीधे चढ़ाई किए इंद्रपुरी के ऊपर, अमरावती, सीधा इंद्र के ऊपर आक्रमण करने निकले। ऐसे उनके शरीर से तेज निकल रहा था, चारों दिशाओं में ऐसे मानो पूरे आकाश को निगल जा रहे हो एकदम, ऐसे लग रहा था अपने आंखों से पूरे विश्व को जला के राख कर देंगे उनके सामने कोई भी आएगा, ऐसे तेजोमय शरीर, और उसमें से इतना प्रज्वलित एकदम अंग कांति निकल रही थी कि कोई देख नहीं पा रहा था सामने से। और जब इंद्र के पूरे शहर को उन्होंने ढक लिया चारों ओर से अपनी सेना से, इंद्रदेव ने जब देखा बलि को, केवल बलि को देखकर वो चिंतित हो गए, बोले इन्हें तो निश्चित रूप से मैं हरा नहीं सकता, कोई सवाल ही नहीं उठता, ऐसा तेजस्वी लग रहा है ये बलि। तो तुरंत वो अपने गुरु बृहस्पति जी के पास गए, बृहस्पति को उन्होंने कहा कि कभी मैंने बलि को इतना तेजोमय, इतना कॉन्फिडेंट, पूरा विश्वास के साथ आते हुए मैं नहीं देख रहा हूं, और उसे देखकर ही मुझे डर लग रहा है, मुझे तो लगता है कोई जीतने का सवाल ही नहीं है। तो कृपया आप बताइए इसका रहस्य क्या है और हमें क्या करना चाहिए इस परिस्थिति में। तो बृहस्पति जी ने स्थिति को अच्छी तरह से जानी थी। खास बृहस्पति थे ना, कभी बड़े बुद्धिमान आदमी को हम कहते हैं बृहस्पति का दिमाग है इसका। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, बहुत ही अच्छी तरह से शास्त्रों को जानते हैं, मर्म को जानते हैं। उन्होंने कहा इंद्र ये इसकी शक्ति नहीं है, ये बलि की शक्ति नहीं है, ये ब्राह्मणों की आशीर्वाद और कृपा की शक्ति है ये। और क्योंकि उनके गुरु ब्राह्मण और अपने वरिष्ठों को, प्रहलाद महाराज जैसे वरिष्ठों को प्रसन्न किए हैं, वो तृप्त किए हैं अपनी सेवा से, उनका आशीर्वाद प्राप्त किए हैं, उनको कोई जीत नहीं सकता तीनों लोकों में। अब जो स्थिति है उनकी, निश्चित रूप से वो जहां भी जाएंगे वो जीतेंगे। इस तरह से एक वरिष्ठों का आशीर्वाद, उसकी शक्ति क्या है, बृहस्पति जी ने इंद्र को समझाया। ये आशीर्वाद हर एक व्यक्ति के लिए उपलब्ध है और उसकी उपलब्धि के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, सबसे पहले कृतज्ञता। कृतज्ञ होंगे कि किसी व्यक्ति की कृपा है, आशीर्वाद है उन हम पर, तो वो कृतज्ञ रहेंगे तो स्वाभाविक रूप से, जैसा बारिश आएगी पर अगर मिट्टी अगर उपजाऊ हो और खुला खुला हो तो मिट्टी वो उस पानी को रख सकती है, अगर चट्टान के ऊपर गिरे तो चली जाएगी। इसी तरह से हम कभी कभी जाते हैं, सबसे बोलते हैं हम कृपया हमको हम पर कृपा कीजिए, आशीर्वाद दीजिए, सर पे हाथ रखिए, पैर भी रख दीजिए हो सके तो, वो हो सकता है पर सचमुच में वो कृपा को प्राप्त करने की योग्यता तब होगी जब हमारे में वो उपजाऊ जमीन का मतलब है कृतज्ञता, एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। भले महाराज के अंदर कृतज्ञता थी, इस व्यक्ति ने मुझे अपना जान वापस जान दिया है, अच्छे तरह से उनको प्रसन्न किए। और यह वैदिक संस्कृति का लक्षण है सम्मान देना। एक उच्च स्तर पर जो भी स्थित है, देव गुरु प्राज्ञ पूजनम, भगवान भी गीता के 17वें अध्याय में कहते हैं देव गुरु द्विज प्राज्ञ पूजनम। शारीरिक तपस्या क्या है, देवताओं के, भगवान के सामने, देवताओं के सामने, देव गुरु गुरु के सामने, द्विज ब्राह्मणों के सामने, प्राज्ञ अपने से ज्यादा ज्ञान जिसको प्राप्त है, भले उम्र में कम हो, सुखदेव गोस्वामी जैसे 16 साल के हो पर नारद मुनि भी सामने आके बैठे, बड़े बड़े ऋषि मुनिगण उम्र में बड़े, तो देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, ये वैदिक संस्कृति है, द पावर ऑफ ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद। उसमें हमारी शक्ति सीमित है, हम कितने भी जिम्नेशियम में जाके ताकत बना ले पर हमारी शक्ति सीमित है, पर जब भगवान की शक्ति, वैष्णवों की कृपा, गुरु की कृपा जब मिल जाती है, अद्भुत चीज होने लगती है, जहां भी हाथ लगाओ सोना बन जाता है, अद्भुत चीज आदमी कर सकता है। श्रील प्रभुपाद जी के जीवन में हम देखते हैं एक बूढ़ा व्यक्ति 40 रुपया लेकर कैसे विश्व भर में जाकर उन्होंने इतने पुस्तक लिखना, इतने संस्था का प्रारंभ करना, इतने शिष्यों को बनाना, प्रोत्साहन देना, इतना आसान नहीं है, कैसे कर पाए, और 12 साल के अंदर। यह कृपा की शक्ति है, यह आशीर्वाद की शक्ति है। इसीलिए बलि महाराज को ये आशीर्वाद मिली है इंद्र, अब इसके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता, ये निश्चित रूप से जीतने वाला है। तो बोले एक ही चीज तुम कर सकते हो, भी चुपचाप यहां से निकल जाओ, लड़के कोई फायदा नहीं, अदृश्य हो जाओ, क्योंकि सामने दिखे तो मार ही कर देंगे। तो इंद्र और जितने सारे देवतागण वहां रहते हैं, कामरूप सिद्धि एक प्रकार की सिद्धि है, कामरूप सिद्धि, कामरूप मतलब जैसी इच्छा हो वैसा रूप बन जाएगा आपका, मरीच के अंदर भी था, असुरों में भी होता है, जैसा इच्छा वहां मरीच बन गया हो, क्या बोलते हैं सोने का एक हिरण, इस तरह से ये सारे देवतागण इंद्र के साथ पक्षी का रूप धारण करके उड़ के चले गए वहां से, खाली हो गया पूरा। बड़े सुंदर से कई श्लोकों में, 15-20 श्लोकों में इंद्रपुरी का वर्णन है, क्या ऐश्वर्य, कितनी सुंदर सुंदर स्त्रियां, कितने बड़े बड़े इमारत, सोने चांदी हीरे मोती सब जड़े हुए, किसको अच्छा लगता है छोड़ के जाने में, पकड़ के रखना, बोले नहीं ये सब छोड़ो यहां से निकलो। और तो सारे देवता वहां से चले जाते हैं। तो बलि महाराज बिना एक खून बूंद किसे गिरे, लड़ाई कुछ किए बिना सीधा आते हैं आसन पर बैठ जाते, हो गया इंद्र, इंद्र की पदवी पर। तब भृगु के जो वंशज हैं जो इनको मदद किए थे, वो कहते हैं तुम उनके आसन पर तो बैठ गए, पर उस आसन पे बैठे रहने के लिए योग्यता चाहिए, कोई भी किसी भी आसन पे जाकर बैठ सकता है खाली है तो, पर योग्यता भी चाहिए ना बैठे रहने के लिए। तो बोले अभी 100 यज्ञ तुम्हें करना पड़ेगा, 100 यज्ञ संपन्न करोगे अश्वमेध यज्ञ, तुम इस स्थिति में रहने के लिए योग्यता प्राप्त करोगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, और शुक्राचार्य के शिष्यों के मदद से सहायता से वो 100 यज्ञ संपन्न करके इंद्र की पदवी पर बैठ जाते और इस तरह से राज्य करते, और इंद्र की पदवी पर बैठकर तीनों लोकों को अपने नियंत्रण में ला लेते। आप सोचिए एक छोटा संस्था चलाने के लिए कितना तकलीफ होता है लोगों को नियंत्रण में रखने के लिए, कोई एक देश को चलाता है वो भी बड़ी मानी जाती है, वो भी 5 साल के लिए सौभाग्यशाली हो तो, नहीं तो उसके पीछे मिड टर्म इलेक्शन करके उसको मिड पोल करके वो भी उड़ा दे। पूरे विश्व नहीं, तीनों लोगों को उन्होंने कब्जे में किया था, पूर्ण रूप से नियंत्रण किया था और राज्य कर रहे थे। तो इस तरह से बलि महाराज भोग कर रहे थे, और जिस तरह पूर्णिमा के दिन आकाश में चंद्र चमकता है, इस तरह से बलि महाराज पूरे संपूर्ण विश्व को तीनों लोकों पर राज्य कर रहे थे चमकते हुए एकदम। शुक्राचार्य ने बृहस्पति ने और एक चीज कहा जाने से पहले, तो इंद्र ने कहा कि मतलब कब तक हम लोग उड़ के चले जाएं, फिर आए क्या, वापस आने की कोई संभावना है? बोले बहुत जल्द ही हो जाएगा, जब ये बलि अपने ही गुरु को असंतुष्ट करेगा तब उनके शाप से जो कुछ भी उसके पास है सबके सब सब लूट जाएगा। एक प्रकार से, पर किस लिए, यसे अप्रसादा न गतिगतोपि, पर किस लिए उन्होंने गुरु की अवज्ञा की, उन्होंने बहुत बड़ा रिस्क लिया, जोखिम, बोले सब कुछ चला जाए चलेगा, पूरे तीनों लोकों का सारा ऐश्वर्य चले जाए चलेगा, पर भगवान को अप्रसन्न करूं मैं, नहीं हो नहीं सकता। अगर ये मेरे गुरु खुद बता रहे हैं कि ये विष्णु हैं और वो खुद भीख मांगने के लिए आए हुए हैं और मुझसे मांग रहे हैं कुछ, अरे लोग भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं और ये आ रहे हैं खुद मांग रहे हैं, कितना अच्छा मौका है, और मैं टाल दूं, पर सब कुछ खो बैठोगे, चलेगा सब खोने के चलेगा, ये पाया और सब कुछ खोया तो क्या खोया, पर यह मौका खोया, पूरा दुनिया प्राप्त किया, क्या पाया? ये बुद्धिमानी, ये होशियारी है। किस लिए अपने जान को जोखिम में डाल रहे हैं, किस लिए अपने रिस्क ले रहे हैं? पर सत्य यह है कि अप्रसन्न करोगे तो सब कुछ भौतिक चीज खो बैठोगे। तो इस तरह से बलि महाराज राज्य करने लगे, सारे देवता इधर उधर उड़ रहे हैं बिना बिना घर के, कह रहा फुटपाथ हो गया, हालत हो गया। आप सोचिए कहां इंद्र का ऐश्वर्य और कहां सड़क पर आदमी आ गया, घर भी नहीं, सर के ऊपर एक छत भी नहीं। उनकी माता अदिति बहुत दुखी हुई, माता का स्वभाव है, माता की एक इच्छा है कि बेटा अच्छा रहे बस, मैं कितना कुछ भी तपस्या करूंगी चलेगा, बेटा खुश, बेटे अच्छे रहे, सब घर संपन्न हो, अच्छे हो, पत्नी हो, बच्चे हो, तो वही उसका आनंद है। किसी मां का आनंद है कि बच्चे अच्छे रहे बस। वो अगर स्वर्ग में बैठी हुई है और देख रही है कि बच्चे सड़क के ऊपर है, कैसे सुखी रह सकती है कोई माता? तो बेचारी अदिति विलाप करने लगी, बहुत ही दुखी थी। काफी समय के बाद एक दिन कश्यप मुनि उनके पति समाधि से निकले और आश्रम की ओर आने लगे। वो कहीं जंगल में थे, आश्रम की ओर आए, आश्रम में देखे कि कुछ साफ साफ सुथरा नहीं है, ऐसे ही पड़ा हुआ है, मतलब कुछ तो विलाप, शोक विलाप है, इसीलिए किसी साफ नहीं है। देखते ही समझ में आ गया कि कुछ वातावरण प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है, बहुत दुखी है। तो जाके पूछे क्या कारण है, क्या तुमने किसी के प्रति अपराध किया, क्या किसी को, बहुत सारे प्रश्न पूछे, जिस प्रकार महाराज युधिष्ठिर ने अर्जुन को पूछा, क्यों ऐसे मुरझाए हुए लग रहे हो, कई प्रश्न पूछे, क्या तुमने अपना धर्म का पालन नहीं किया, किसी के प्रति अपराध किया, जो आश्रय लेने आया था उसको आश्रय नहीं दिया, अतिथि घर में आया था उसको घूर घूर के देख के भगा दिया, बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं जिससे हमको सीखना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, नहीं तो हम भी मुरझा जाएंगे। तो वो कहती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, आपकी कृपा से, आपके नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन में, आपकी शिक्षा से मुझे मालूम है क्या करना है, मैं सारे चीजों को अच्छी तरह से संपन्न कर रही हूं, आश्रम में कोई समस्या नहीं है। तो समस्या क्या है? समस्या यही है कि मेरे बच्चे सारे देवतागण घर सर के ऊपर एक छत नहीं है, इस तरह से भटक रहे हैं इधर उधर, सारा ऐश्वर्य को खोकर भटक रहे हैं, और इसके कारण मैं बहुत दुखी हूं, मेरा सब कुछ ऐश्वर्य होते हुए भी मैं बहुत दुखी हूं, कृपया इसके लिए कुछ उपाय बताइए, किस तरह से वो वापस अपने स्वर्ग लोक पे आ जाए और सुख और समृद्धि के साथ रहे। कश्यप मुनि मुस्कुराने लगे, बोले तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, और ये घर गृहस्थी, बच्चे, इन सबसे आसक्ति दूर रखो, क्यों इतना चिंतित हो, अपने अपने कर्मों के अनुसार खोता है पाता हो जाएगा, तुम भक्ति करो। आप सोचिए आपको कोई बोले तो आप क्या बोलोगे? हम उस स्तर पर है नहीं, बोले महाराज इंस्ट्रक्शन बहुत अच्छा है पर अभी ना वो पच नहीं जा रहा है, नेक्स्ट लेवल, अलग लेवल पे बताओगे। तो इस तरह से माता अदिति बोली, आप जो बोल रहे हैं कड़त है पर वड़त नहीं, आप जो बोल रहे हैं समझ में आ रहा है पर जम नहीं रहा है मेरे हृदय में, क्या करूं मैं, अभी कुछ और बताइए, जब तक मेरे पुत्र आके नहीं बैठ जाएंगे, अपने पूर्व स्थिति को प्राप्त नहीं करेंगे, मैं सुखी नहीं हो सकती, और आप ये फिलॉसफी मत बोलिए मुझे, ये सिद्धांत मुझे मत बोलिए, मैं समझ नहीं पाऊंगी, मैं माता का हृदय नहीं समझता ये सब। तो कश्यप मुनि ने कहा कि एक और तरीका है कि आप वासुदेव कृष्ण को प्रसन्न करो, भगवान को प्रसन्न करो, भगवान की कृपा से कुछ भी हो सकता है। भगवान अगर इच्छा करे उनकी इच्छा के विरुद्ध कुछ ले, अगर वो अगर इच्छा करे तो कुछ हो सकता है, तुम्हारी जो इच्छा है वो पूर्ण कर सकते। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। अकाम कोई इच्छा नहीं है, सर्व कामो वा भौतिक इच्छा है, भरे पड़े हृदय में, मोक्ष काम मोक्ष की इच्छा है, कुछ भी इच्छा हो तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्रता से अगर भक्ति योग करोगे, भगवान को प्रसन्न करोगे, तो तुम्हारी सारी इच्छाएं अच्छी तरह से पूर्ण हो जाएंगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, किस तरह से इच्छा पूर्ण हो, कैसे क्या करूं मैं, कौन सा व्रत कौन सा जप क्या करूं। और तब उन्होंने कहा कि मैं शुरुआत में प्रजापति हैं कश्यप मुनि, मैं ब्रह्मा जी से यह प्रश्न पूछा था सृष्टि के शुरुआत में, और उन्होंने मुझे एक व्रत बताया जिसका नाम है पयोव्रत। पय पय यानी दूध, पयोव्रत, जिस व्रत के दौरान केवल दूध पीना चाहिए व्यक्ति को और कुछ नहीं, 12 दिन के लिए। ये फरवरी मार्च समय में आता है, उस समय में बहुत सारे नियम बताए, ये नियम का ऐसा नहीं करना, वो करना ही करना, और हर रोज ब्राह्मणों को खिलाना और केवल दूध पीकर जीना और कुछ दूध, पयो पय पानम बस। तो ये पयोव्रत अगर तुम करोगी 12 दिन के लिए बड़ी कठोरता से सख्तता से, तो उसी के अंत में भगवान प्रसन्न होंगे और आपकी सारी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। ये एक खासियत है, हमारी इच्छा भी पूर्ण होना है तो एक सदगुरु की कृपा, उन पे आज्ञा देंगे तो बताएंगे हमको किस तरह से। एटलीस्ट उन्होंने हृदय खोल के बताया और इस तरह से आदित्य कश्यप मुनि के आज्ञा के अनुसार उस अनुकूल समय को प्राप्त होने पर अदिति ने ये पयोव्रत की। और जिस दिन वो पयोव्रत समाप्त हुआ उसी दिन, वो 12वें दिन शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, भगवान सुंदर स्वरूप पीत वस्त्र धारण किए प्रकट हो गए विष्णु। अदिति तो पहले कुछ प्रार्थना भी नहीं कर पाई, फिर वो गुणगान करने लगी भगवान की और प्रसन्न की। तो भगवान ने पूछा किस तरह से मैं तुम्हें प्रसन्न, मांगो कुछ वर मांगो, तुमने मुझे प्रसन्न किया है इस व्रत के द्वारा। तो उसने कहा कि बस मेरी यही इच्छा है कि मेरे पुत्र जो है, जिनको अपने ही परिस्थिति से निकाल दिया गया है, उन्हें वापस सुख और समृद्धि में वो लोग स्वर्ग लोक में वापस निवास करें। तो भगवान ने वचन दिया निश्चित रूप से ये हो जाएगा, आप चिंता मत करो। और तत्पश्चात थोड़े ही दिनों में कश्यप मुनि के मन में, समाधि में भगवान कश्यप मुनि ने देखा कि भगवान मेरे हृदय में प्रवेश किए हैं, और कश्यप मुनि के हृदय से अदिति के गर्भ में भगवान स्थानांतरित उनका हुआ। और ब्रह्मा जी को जब पता चला कि अदिति के गर्भ में भगवान अवतरित आए हुए हैं और वो अभी अवतरित होने वाले हैं, तो बड़े सुंदर सुंदर प्रार्थना करने लगे भगवान की प्रसन्नता के लिए। आज के दिन श्रावण द्वादशी, आज के दिन अभिजीत नक्षत्र जब आसमान में चमक रहा था उस समय दोपहर के समय वामन देव ने पहले शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, भगवान विष्णु जो है प्रकट हो गए अदिति के सामने, माता अदिति और कश्यप मुनि के सामने, और इस तरह से उन्होंने प्रार्थना की और तत्पश्चात अपना स्वरूप बदलकर एक वटु, वामन मतलब बौना, वो सर्कस में होते ना, 2 फुट के होते हो, तो इस तरह से भगवान उस तरह से एक वामन वटु बन गए, ब्राह्मण। साधारणतः ये जो हम लोग वामन जो किस लोग जो देखते हैं उनका स्वरूप थोड़ा अलग ही होता है, उतना मतलब चेहरा होता है, मतलब किसी को ऐसा पकड़ के दबा दिया होता कैसा होता है उतना अच्छा, मतलब प्रोपोर्शन उतना ठीक नहीं होता लगता है, समझ में आता है कुछ तो गड़बड़ी है। पर वामन का स्वरूप ऐसा नहीं था, जो भी देखते थे आकर्षित हो जाते थे, इतने सुंदर स्वरूप। सारे अवतार बताए गए ना, सुंदरता के अगर अवतार बताए जाए, शक्ति, एक अवतार ने शक्ति प्रदर्शित की, किसी अवतार ने अलग अलग चीज, वामन अवतार सुंदरता के लिए, बहुत ही सुंदर देखने में। तो सारे आसमान में जितने सारे मतलब सिद्ध चारण और सब प्रकार के लोग एकत्रित होकर पुष्प वृष्टि करने लगे, अप्सराएं नाचने लगी और ऋषि मुनिगण गुणगान करने लगे भगवान की इस सुंदर स्वरूप वामन स्वरूप का। तत्पश्चात तुरंत वामन देव का अभिषेक हुआ, जन्म होते अभिषेक करते ना, जन्मदिन अभिषेक किया गया वामन देव का सबने मिलकर, और तत्पश्चात तुरंत अभिषेक होने के बाद बोले अभी इसका उपनयन संस्कार भी अभी कर देते, बौना है ना, वो बोले अभी उपनयन संस्कार करते हैं। तो तुरंत सूर्य देव आए, गायत्री मंत्र भूर्भुव स्वः, हम लोग बोलते हैं ना सूर्यदेव का, एक्चुअली सूर्यदेव को संबोधित करते हुए गायत्री मंत्र बोलते हैं। सूर्यदेव खुद गायत्री मंत्र देने आए सेवा करने, कुछ तो एक सेवा का मौका मिला उनको। तो सूर्यदेव आए भगवान को, वामन देव को गायत्री मंत्र सुनाने के लिए। बृहस्पति ने उन्हें यज्ञोपवीत दिया, कश्यप मुनि ने मेखल स्ट्रॉ बेल्ट, एक मेखल पहनते बेल्ट जैसा मुंज, एक प्रकार का एक घास है उसके बना हुआ एक कमरबंद। माता पृथ्वी ने कृष्णाजिन मतलब जो हिरण की जो अजिन खाल, मृग खाल, उसको शरीर ढकने के लिए वो मृग खाल दिए। चंद्रदेव ने उन्हें ब्रह्म दंड, एक दंडा दिया, ब्रह्मचारी का एक दंडा, भिक्षाटन के लिए जब जाते तो दंडा पकड़ के जाते। माता अदिति ने उन्हें कोपिन पहनाया। स्वर्ग के अधिपति देवता ने आकर उन्हें एक छत्री दिया। ब्रह्मा जी ने वामन देव को एक कमंडलू दी। सप्तऋषि आए और कुशा घास दिए। माता सरस्वती ने रुद्राक्ष का एक माला पहनाया उन्हें। कुबेर जी आए जो देवताओं के खजांची हैं, कैशियर, बोलिए क्या दिए, भिक्षा पात्र दिए। माता भगवती शिव जी की पत्नी देवी पार्वती, पहली बार पहला भिक्षा उन्होंने दिया। और इस तरह से सब लोगों ने उनकी स्तुति की, पूजा की, आराधना की और उससे प्रसन्न होकर जब वामन देव को पता चला कि नर्मदा नदी के पूर्वी भाग में भृगुकच्छ नाम का जगह है और वहां बलि महाराज यज्ञ कर रहे हैं सारे ब्राह्मणों को लेकर, तो वो उस दिशा की ओर चलने लगे एकदम तेजो में, मानो सूर्यदेव निकल पड़े हो, चलने लगे। देखने में तो बहुत बौने थे पर भागवत में वर्णन है कि एक एक कदम रख रहे थे, माता पृथ्वी धसती जा रही थी उनके वजन से। भगवान चाहे विश्व विराट स्वरूप हो या एक बौना स्वरूप हो, उनके अंदर सारी शक्ति उतनी ही रहती है, मां के गर्भ में हो या कहीं भी हो, सारी शक्ति, इसलिए तो भगवान हमेशा के लिए भगवान है, तपस्या करके भगवान नहीं बने, वो कोई पोस्ट पदवी नहीं है। तो पृथ्वी धसती जा रही थी उनके चरण कमलों के नीचे, छोटे छोटे चरण कमल उसके नीचे धसती जा रही थी। और इस तरह से बलि महाराज के यज्ञ स्थली पे पहुंचे। जब दूर से आने लगे, ऐसा तेज उनके शरीर से निकल रहा था कि उनके सामने बड़े बड़े महान ब्राह्मण जो लोग बैठे हुए थे सब फीके पड़ गए। जिस प्रकार सूर्य के उदित होने पर ये जो फायरफ्लाई, उसको जुगनू, रात को ऐसा उनको लगता है कि मैं पूरे दुनिया को चमका रहा हूं। जिस पत्ते पे बैठे हो पत्ते को भी नहीं चमकाते, उनको लगता है ऐसा। पर जब सूरज उग जाता है तो कोई पूछता नहीं उनको, रात के समय दिखता है थोड़ा। जब वामन देव वहां आए, सबके सब फीके पड़ गए, ब्राह्मणों का तेज फीका पड़ गया इधर, लोगों को लगा रहे रहे ये तो साक्षात सूर्यदेव आ रहे हैं शायद, या कहीं चतुष्कुमार तो नहीं आ रहे, अग्निदेव तो नहीं आ रहे। तो इस तरह से स्पेकुलेशन, कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, कौन आ रहा है। और फिर देखिए कि एक छोटा सा ब्राह्मण बहुत ही सुंदर देखने में, सबके हृदय को मोह लिया उन्होंने, चलते आ रहे हैं, हाथ में एक छतरी, एक में दंड कमंडलू और मृगछाल पहने हुए और चलते हुए आ रहे हैं, छोटा सा बटुआ स्वरूप। स्वाभाविक रूप से उनके तेज से प्रभावित होकर सबके सब ब्राह्मण खड़े हो गए और सबने दंडवत प्रणाम किया और उन्हें स्वागत किए। बलि महाराज बहुत ही आनंदित हुए, ये बड़ा शुभ चिन्ह है कि मैं यज्ञ करने जा रहा हूं और एक दूसरा एक व्यक्ति, एक शुद्ध, एक महान ब्राह्मण आए हैं हमारे यहां। तो उनको स्वागत किए, उनके चरण धोए अपने हाथों से। चरण धोने के बाद ये जानते हुए कि साक्षात शिव जी भी भगवान के चरण कमलों से निकली हुई जो चरणामृत है गंगा जी, उसको गंगाधर नाम से प्रसिद्ध हैं क्योंकि उसको अपने शिरोद्धार करते हैं। इस तरह से ये जानते हुए उन्होंने वामन देव के धुए हुए जो चरणामृत है उसको अपने सिर पे प्रक्षालन किया और पूछने लगे, हे ब्राह्मण देवता, बहुत बहुत मैं आपका आभारी हूं कि आप इस यज्ञ में आप आए, आपको मैं प्रसन्न करना चाहता हूं, आपकी मैं सेवा करना चाहता हूं, क्या दूं मैं आपको? निश्चित रूप से कोई उद्देश्य होगा, आप यहां आए हो, क्या चाहिए? गाय चाहिए, सोना चाहिए, घर चाहिए, कुछ प्रसाद वसाद चाहिए, या एक सुंदर ब्राह्मणी चाहिए क्योंकि आपके बगल में कोई खड़ा नहीं है और शायद आपको कोई मैचिंग वाला कोई चाहिए। बोले आपको कोई एक ब्राह्मणी चाहिए, आपको गांव चाहिए, हाथी चाहिए, घोड़े चाहिए, रथ चाहिए, जो चाहिए मांगिए, मैं आपको आपकी सेवा करना चाहता हूं, आपको कुछ भी मैं आप मांगोगे मैं देना चाहता हूं, कुछ भी आप मांगिए मैं वचन देता हूं, आप इस शुभ मुहूर्त पे आए हो मैं आपको प्रसन्न करूंगा, निश्चित रूप से आप जो चाहिए मैं दूंगा। वामन देव देखने लगे और कहने लगे, बलि मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं जो भी मांगूंगा तू दोगे, क्यों? क्योंकि तुम्हारे वंशज भी कैसे लोग हैं, एक से बढ़कर एक, हिरण्यकशिपु, नहीं हंसिए मत, हिरण्यकशिपु मामूली नहीं था, वो पूरे ब्रह्मांड को उसने नियंत्रण किया था। हिरण्यकशिपु जैसे तुम्हारे पूर्वज परदादा, जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रण किया था, और उसका छोटा भाई, छोटे दादा हिरण्याक्ष, जो हाथ में गदा लेकर पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण किए थे, चैलेंज करते हुए, ललकारते हुए कि कोई भी है लड़ाई के लिए आ जाओ, क्या क्षत्रिय है, तुम्हारे वंश में महान क्षत्रिय हुए हैं जिन्होंने जान देकर भी अपना जो मत, जो अपना जो इच्छा थे वो पूर्ण किए। निश्चित रूप से मुझे भी विश्वास है कि मैं जो भी कहूंगा आप जो वचन दिए हो पूर्ण करो, मतलब प्लेटफॉर्म बना के तैयार कर रहे हैं, बाद में पीछे मत जाना जो पूछने वाला हूं बहुत महंगा पड़ने वाला है। पहले गुणगान किए, कभी कोई करोड़पति के पास जाकर सीधा बोलेगा डोनेशन दो ना, बोलेगा डोनेशन क्यों, पहले उनको बोलना चाहिए आप कितने महान हो, आपने इधर डोनेशन दिया इतना दिया, उधर 1 लाख दिया, उधर 50 लाख दिया है, निश्चित रूप से आपके पास कोई जाता है खाली हाथ वापस नहीं जाता, आप इतने उदार व्यक्ति हो। अब बिल फाड़ दो हमारा भी। तो पहले गुणगान करना ये तरीका है, प्रार्थना करने का तरीका है, आप महान हैं हम तुच्छ हैं, कृपया थोड़ा कृपा कीजिए, भगवान के सामने जाने में यही तरीका है। पहला बोलना भगवान का गुणगान करो, फिर बोलो मैं कितना पतित हूं, आपकी कृपा के बिना मैं रह नहीं सकता, कृपया दीजिए। भगवान खुद सिखा रहे हैं कैसा डोनेशन मांगना चाहिए। कैसा भीख मांगना चाहिए। तो गुणगान किए पहले, और सही तरह से हृदय से गुणगान किए, बोले कि एक से बढ़कर एक आपके पूर्वज ऐसे हैं, आपका नाम ही ऐसा है, आपका कार्य ही ऐसा है, मुझे पूर्ण विश्वास, इसीलिए मैं यहां आया हूं। और इस तरह से उनको गुणगान किए, और तत्पश्चात बोले मैं ज्यादा कुछ नहीं मांगता, मैं मेरे कद का 3 पग जमीन मांगता हूं बस। बोले महाराज आश्चर्यचकित हो गए, बोले मांगने भी आया तो क्या मांग रहे हो, किससे मांग रहे हो, अरे प्रेस्टीज की इश्यू है, वो करोड़पति के साथ 5 पैसा मांगोगे तो मतलब अपमान हो गया, बोले ऐसी चीज मांग रहे हो आप, लगता है आपका कद जैसा छोटा है, आपकी बुद्धि भी बहुत कम है, आपको मांगना भी नहीं आता, किससे क्या मांगना ये शायद आपको नहीं मालूम, क्या मांग रहे हो आप, कुछ भी मांगो मैं देने के लिए तैयार हूं, और मेरे कद का मांगते तो चलेगा, आपके कद का 3 कद जमीन 1 3 पग तो इतना ही होगा बस, आप बैठ भी नहीं सकते वहां, इतना ही छोटा जमीन क्यों मांग रहे हो आप। फिर भी बलि महाराज ने वचन दिया, वामन देव ने एक बहुत अच्छी बात बोली उसे, बोले हे बलि, जो व्यक्ति जिस स्थिति में है उस स्थिति में अगर तृप्त नहीं है तो निश्चित रूप से पूरे ब्रह्मांड में जितना भी संपत्ति ऐश्वर्य हो मिल जाए तो भी वो तृप्त नहीं होगा। इनडायरेक्टली सूचित कर रहे थे तू तीनों लोगों का मालिक है, यहां बैठा हुआ फिर भी यज्ञ कर रहा है और थोड़ा बढ़ाने के लिए, तो तृप्त नहीं है, और मैं तृप्त हूं, 3 पग जमीन काफी है मेरे लिए। एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज है, जिसने अपने इंद्रियों को वश में किया है उसके लिए जिस स्थिति में भी है वो संतुष्ट रहेगा। संतुष्टि तब आएगी जब इंद्रियां वश में रहेगी, नहीं तो पूरे विश्व का जितना भी संपत्ति आ जाए आपके पास जितना मिलेगा उतना ज्यादा चाहते रहेंगे, संतुष्टि कभी नहीं आएगी। मन की तपस्या है संतुष्ट होना, जिस स्थिति में है हम उसमें संतुष्ट रहना मन की तपस्या, मन की शुद्धि। किसका मन शुद्ध है, जो संतुष्ट है जिस स्थिति में भी भगवान ने हमें रखा है। असंतुष्टि मन का दूषण है। तो इस तरह से बलि महाराज ने को उन्होंने कहा कि नहीं मैं 3 पग जमीन, मेरे पग के 3 पग जमीन मुझे संतृप्त कर देगा। तो बलि महाराज ने तुरंत कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप जो भी मांग रहे हो मैं पूर्ण रूप से उसे परिपूर्ण होगा, मैं तृप्त करूंगा। ठीक उसी समय वहां शुक्राचार्य आ गए। शुक्राचार्य बड़े शक्तिशाली थे, बुद्धिमान थे, मिस्टिक योगी, मालूम था उनको कौन है ये। बोले मूर्ख बलि, तुझे ये नहीं मालूम सामने जो खड़ा है वो कौन है, ये तुझे धोखा देने आया है, ये कोई मामूली ब्राह्मण नहीं है, ये साक्षात विष्णु। और अगर इसे तू दे देगा, अपने तू वचन दे रहा है, तो ये दो कदम में संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लेने की शक्ति है इसकी। तुझे तीसरा कदम देने के लिए कुछ रहेगा नहीं, तू अपने वचन को निभा नहीं पाएगा, और झूठा साबित होने के कारण, इस पाप के कारण तू नरक में जाएगा। पर मेरे पास एक तरीका है जिसके द्वारा तू नकार सकता है। कहते कि सुनो, बहुत ही अच्छी तरह से इसको कहते हैं शुक्र नीति। शुक्र नीति बहुत अच्छा है, पर गलत जगह पे अप्लाई किया। भगवान श्री कृष्ण ने भी शुक्र नीति अप्लाई की, लागू किया, पर मालूम होना चाहिए। बोले इतना दान नहीं देना चाहिए कि तुम्हारे पास कुछ नहीं, भीख मांगने हो जाए। उतना दान नहीं कभी देना चाहिए, दान देना चाहिए धर्म के लिए, घर के लिए, सब। रूप गोस्वामी बोलते हैं ना, बांट के दान कितना देना चाहिए। बोले नहीं, धर्मार्थ काम मोक्ष के लिए कुछ रखते, बाद में दान देना चाहिए। एकदम सही बोला उन्होंने, पर फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, पर गलत जगह पे अप्लाई कर रहे हैं। भगवान ही आए हुए हैं इधर। तो इस तरह से उन्होंने समझाया किस तरह से कब देना चाहिए, कितना देना चाहिए, कब नहीं देना चाहिए। और अगर तुम कहोगे कि नहीं नहीं नहीं, मैंने वचन दे दिया है, अभी वचनबद्ध हूं मैं, बोले नहीं, अभी तक तुमने ओंकार नहीं किया है। ओंकार का उच्चारण करने के बाद फिर तुम वापस नहीं आ सकते। इतना ही नहीं, स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्त्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणे हिंसायाम नान्द्रतम स्याद जुगुप्सितम। बोले पांच चीज के लिए अगर तुमने वचन भी दे दिया ना, पीछे आ सकते हो, और पाप नहीं है। कब? स्त्रीषु, एक स्त्री को अगर थोड़ा प्रभावित करना है, हां मैं बीएससी किया, एमएससी किया, पीएचडी भी किया हूं, तो स्त्री को वश में लाने के लिए नर्म, हंसते हंसते, कभी 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 दोस्तों में होता है ना, कभी झूठ बोलते हैं, हाँ हाँ मैंने किया, सब हो गया, सब हो गया। विवाहे च, बच्ची का विवाह कराना है तो बोलते हाँ, अब लड़के का विवाह कराना है, एक नंबर का नालायक, बहुत अच्छा, योग्यता ही योग्यता, सारे सद्गुणों से संपन्न है हमारा लड़का, शादी करने के बाद पता लगता है ये तो एक नंबर का नालायक निकला। विवाह क्या करेंगे, जो बोलना पड़ता है, ठीक है, अच्छा अच्छा, अच्छा लड़का, अच्छा लड़का, थोड़ा कभी कभी होता है, कुछ नहीं, अच्छा है। विवाहे च वृत्त्यर्थे, पैसा कमाने के लिए कुछ बोलना पड़ जाता है थोड़ा बहुत। प्राण संकटे, प्राण संकट में आ गया तो झूठ बोलने सकते हैं, चलेगा, प्राण बचाने के लिए झूठ बोला जा सकता है। गो ब्राह्मणार्थे, गो रक्षा और ब्राह्मणों के हित के लिए, उनको बचाने के लिए झूठ बोला जा सकता है। हिंसायाम, किसी को जान जा रही है तो उसको बचाने के लिए झूठ बोला जा सकता है। न अनृतम स्यात जुगुप्सितम, ऐसी जगह पे झूठ बोला तो झूठ नहीं माना जाता, पाप नहीं है, चलता है, शास्त्र के आधार पर उन्होंने साबित किया। पर भगवान गीता में कहते हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। तीन गुणों से भरा ये वेदा, ऊपर से ऊपर चारों, ऊपर से नीचे आओ, यही है, इससे परे जाओ तुम, निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। तो इस तरह से बलि को बोले कि मत देना, नहीं तो तू नरक में जाएगा। अब बलि महाराज धर्म संकट में पड़ गए। एक जगह उनके गुरु, जिन्होंने उनको जान दिया, जिनकी कृपा से आज पूरे ब्रह्मांड के विश्व के नायक है वो, सब कुछ उन्हीं की कृपा से है, तो एक प्रकार कृतज्ञ है, एहसान उनका, उनका बड़ा एहसान है उनके ऊपर। दूसरे जगह एक ब्राह्मण को वचन दिया है, और अभी भी गुरु ने कंफर्म भी कर दिया कि विष्णु ही है, और यह भी कह दिया है अगर दूंगा कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ लेने वाला ही है। अगर हां बोल दिया आपने, और आपने अगर ओंकार करके दे दिया बाप, कुछ नहीं बचने वाला, और तू नरक में जाएगा, तू नरक में जाएगा, तू दे नहीं पाएगा, तीन कदम दे नहीं पाएगा, और झूठ बोलने के कारण तू नरक में जाएगा। आप सोचिए, अब अगर आप इस स्थिति में होते तो क्या करेंगे? अरे 100 रुपया देने के लिए हम हिचकिचाते हैं, बोलते नहीं बोला था, 6 नहीं बोला था, एक्चुअली 1 शून्य ज्यादा हो गया, मैं 10 ही बोला था। थोड़ा झूठ बोल देते हैं हम लोग, दो मिनट के अंदर पलट देते हैं अपने वाक्य को। पर बलि महाराज बोले नहीं नहीं नहीं, मैं अभी इस ब्राह्मण को वचन दिया हूं कि जो भी मांगेगा मैं दूंगा, मैं कैसे पीछे हटूं, पर अगर नहीं हटूंगा नहीं हटूंगा तो फिर गुरु का शाप और सब कुछ खो बैठूंगा, ये ब्राह्मण तो सब कुछ लेने वाला है, धर्म संकट। और व्हाट इज इट कॉस्ट, मतलब उसका कितना महंगा पड़ेगा सोचिए। कभी कभी हम लोगों का कुछ पैसे का नुकसान है या कुछ चीजों का नुकसान या हमारा नाम बदनाम होने वाला है, कितना हम लोग झूठ बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं। मीना ही खिलाओ, कौन खिला माहिती नहीं, ए कौन फोड़ा इसको, मैंने नहीं फोड़ा, मैं ऐसे ही खड़ा था, हवा आया गिर गया, ओ हवा के मैं उसके ऊपर गिरा, वो नहीं बोलेगी कुछ, इसके लिए इतना आराम से झूठ बोल देते हम लोग कलयुग के लोग पूरी बोल रहे हैं कि नहीं तो तूष्णीम बभुआ, भागवत कहता है कि बलि महाराज शांत हो गए और सोचने लगे, धर्म संकट है, इनको खुश करूं, इनके प्रति अपना कृतज्ञ है, या इसको मैंने वचन दिया है इसको खुश करूं, अगर इनको खुश करूंगा तो इनको अप्रसन्न करूंगा, इनको खुश करूंगा तो इनको अप्रसन्न करूंगा, किसी एक को तो अप्रसन्न करूंगा और अप्रसन्न किया दोनों को, मेरा नाश होने वाला, सत्यनाश, सर्वनाश, 100% गारंटीड, स्टैम्प पेपर मार के बता दिया गया सर्वनाश होने वाला है तेरा। और एक ही चीज कहना है, सॉरी सर मैं नहीं दे सकता, गुरुजी ने बोला है, गुरु का आज्ञा पालन करना चाहिए, बोल सकते थे, कोई गलत नहीं था, और उन्होंने शास्त्र के भी बताया है कि ये पांच चीजों की जगह बोला जा सकता है 100%। एक वचन बस, उसको निभाने के लिए कैसा सत्यवादी कि नहीं, एक बार मैंने वचन बोल दिया ना, मुंह से निकल गया ना, अब उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। तो सोचने लगते हैं, बोले झूठ बोलना पाप है, मैं कैसे झूठ बोल सकता हूं, पृथ्वी माता बड़े बड़े पहाड़ बड़े बड़े नदियां समुद्र के बोझा को ढो सकती है अपने सर पर अपने शरीर पर एक झूठा व्यक्ति चलता है ना, उसका बोझा बहुत लगता है पृथ्वी माता को। आप सोचिए आज कितना बोझा ढो रही होगी बेचारी पृथ्वी माता, बात बात पर झूठ बोलते हैं। तो खास करके एक ऐसा साधु व्यक्ति को मैंने कहा है, साधु व्यक्ति को मैंने वचन दिया है, उससे मैं पीछे कैसे हट सकता हूं, ये पाप है, मैं इसे हटूंगा नहीं। आप बोलोगे कि बड़े बड़े क्या बोलते हैं एम्पायर साम्राज्य बनाने के लिए, ये साम्राज्य मैं जीत लूंगा, अगर ये करूंगा तो पूरा और भी बड़ा साम्राज्य बन जाएगा, तो साम्राज्य मैं बना लूंगा, पर ये साम्राज्य जो है अगर दूसरों की भलाई के लिए कर रहा है तो ठीक है, केवल मेरे हित को बढ़ाने के लिए अगर मैं साम्राज्य बढ़ाऊंगा, इससे अच्छा है कि लोगों की भलाई के लिए मैं अपना शरीर भी मेरा चला जाए, मैं प्राण भी दे दूंगा चलेगा, मैं जान भी देने के लिए तैयार हूं अगर इससे लोगों को फायदा हो, पर उनको तकलीफ में डाल के मेरा साम्राज्य बढ़ाने के लिए मैं झूठ बोलने के लिए तैयार नहीं हूं। और व्यक्ति तो वैसे भी नश्वर, शरीर तो वैसे भी नश्वर है, एक दिन जाने वाला है, पर व्यक्ति का यश जो है, यश हमेशा के लिए रहता है, यश या अपयश हमेशा के लिए रहता है, व्यक्ति तो चला जाएगा, तो वैसे भी ये जाने वाला है, आप नहीं तो कल 50 साल के बाद। वसुदेव ने भी कंस को यही बोला, ऐसे काम तू मत कर जिसके कारण हमेशा के लिए तेरा और तेरे वंश का नाम कलंक हो जाए, वैसे भी तू शरीर जाने वाला है, उस शरीर को बचाने के लिए क्या कुछ कर रहा है तू। बलि महाराज यही चीज बोल रहे हैं, मैं ऐसा कार्य नहीं करना चाहता हूं, भले मृत्यु आ जाए चलेगा, पर मृत्यु से पहले कुछ ऐसा कार्य नहीं करना चाहता हूं जिससे मेरा अपयश हो और पूरे वंशज का अपयश हो, नहीं मैं नहीं करूंगा। दधीची का उदाहरण दिए, दधीची ने अपना शरीर ही दे दिया देवताओं को, संरक्षण के लिए और आज पूरे ब्रह्मांड में प्रसिद्ध हैं दधीची मुनि। तो इस तरह से कुछ भी उसका क्या बोलते हैं कॉन्सिक्वेंस परिणाम कुछ भी हो, मैं इस ब्राह्मण को जो वचन दिया हूं उससे मैं पीछे नहीं हटूंगा, कुछ भी होने दो। और आप कह रहे हो कि ये भगवान है, तो भगवान को प्रसन्न करना तो जीवन का उद्देश्य है, आपने ही हमें सिखाया है और आप अभी ही कह रहे हो। शुक्र आचार्य मतलब क्या? आचार्य का बेटा आचार्य, नालायक हो या लायक हो, शुक्र उसका बेटा हो, गोस्वामी का बेटा गोस्वामी नहीं बनता। जिस प्रकार डॉक्टर का बेटा पैदा होते ही डॉक्टर स्टेथोस्कोप लेके नहीं आता, उसको भी MBBS करना पड़ता है। इस तरह से आप शुक्राचारी ही हो सचमुच में, आप अपना ये बचाने के लिए, क्योंकि आपको फिर अच्छा शिष्य मिला है, अभी शिष्य सब खो बैठेगा तो आपको फिर मिलेगा नहीं कुछ, इसलिए आप बोल रहे हो। मेरे हित के लिए नहीं, आपके हित के लिए बोल रहे हो। ये सब बोला नहीं उन्होंने, मन ही मन ये सब विचार करने लगे और उन्होंने कहा कि मैं ब्राह्मण को कह दिए कि मैं वचन देता हूं कि मैं निश्चित रूप से ये मैं जो वचन दिया हूं वो पूर्ण करूंगा। तत्पश्चात जैसे शुक्राचार्य ने बताया था, वामन देव अपना स्वरूप बढ़ाने लगे, विस्तृत करने लगे, बढ़ाए इतना बढ़ाया, बलि महाराज साक्षात भगवान के विश्वरूप का दर्शन किया, भगवान के चरण कमलों का उन्होंने देखा कि किस तरह से दो ही कदम में आसमान और पूरे पाताल और जमीन को नाप लिया उन्होंने, कुछ बचा ही नहीं, दो ही कदम में पूर्ण रूप से नाप लिए। जब भगवान का चरण कमल उठते 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 ब्रह्मांड को भेद दिया, वहां गया ब्रह्मलोक में, तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से उसको स्नान कराया, भगवान के चरण कमल का अभिषेक किया और वही गंगा जी के रूप में आज भी बह रही है। तो सारे असुरों ने बलि महाराज के अनुयायी, ये तो बड़ा क्रूर आदमी निकला, मार डालो, काट डालो, सब तलवार लेके आक्रमण करने लगे। बलि महाराज नाप लिए और वापस अपना मूल स्वरूप में आ गए, मारने के लिए गए सारे असुर। बलि महाराज ने मना किया, बोले मत मारो, क्या कर रहे हो तुम लोग, मैंने तुम्हें आज्ञा नहीं दी। बोले नहीं, हम लोग मारेंगे, आपके प्रति इन्होंने धोखा दिया है, मार डालेंगे। पर विष्णु के जितने सारे ये जो पार्षद थे उन लोगों ने बड़े आसानी से असुरों को मार डाला। तब विष्णु के पार्षद वैकुंठ से आए हुए व्यक्ति, अरे एक विकृत स्वरूप उसका हिरण्यकशिपु, कोई देवता उसको नहीं मार पाए, तो आप सोच लीजिए वैकुंठ के निवासी हैं, बड़ी आसानी से सारे असुरों को मार डाले। तत्पश्चात गरुड़ जी आए और भगवान के इशारे को समझकर, इच्छा को समझकर उन्होंने कहा कि तुम चूक गए अपने वचन में, तुम दो ही कदम दे पाए, तीसरा कदम के लिए जगह नहीं है, तुम चूक गए, तुम अपराधी हो। और इस तरह से वरुण पाश में उन्होंने बांध दिया। आप सोचिए एक क्षण में पूरे तीनों लोकों का राजा आधे घंटे के अंदर खुद को बिका हुआ, मतलब एक कुछ भी नहीं, सब कुछ नष्ट, और वो भी बंधे अपने अनुयायियों के सामने, अपने सारे जो उनको पूजते हैं उनके सामने बंद कर बंदी जैसा पड़ा हुआ एक व्यक्ति, कितना अपमान हुआ होगा। कभी कभी लोगों को थोड़ा अपमान हो जाता है ना, नाम कलंक हो जाता है, सुसाइड कर लेते हैं लोग, सहन नहीं कर पाते। हिटलर का जब बदनाम हो गया, पता चला कि सब हार रहे हैं, सुसाइड कर लिया हिटलर ने, लोगों को सहन नहीं हो पाता है। कितने लोग जल्द के मर जाते हैं, कुछ कर लेते हैं, क्योंकि वो नाम नहीं चुका पाए, लोग आके सड़क पे खड़े हो जाएंगे और मेरा नाम बदनाम कर देंगे, समाज में मेरा नाम कलंक हो जाएगा, मर जाते हैं। बलि महाराज क्या क्या खो रहे थे सोचिए, सब कुछ, और इतना ही नहीं, आशीर्वाद नहीं, शाप मिल भी मिल गया, गुरु का शाप भी मिल गया। क्षिप्तम शाप मिला, सब कुछ खो बैठे, बंदी बना लिए गए, पर फिर भी अपने जो वचन दिए थे उससे हिला नहीं उन्होंने। एक ब्राह्मण को एक वचन दिया बस, उससे हिले नहीं। तो भगवान ने कहा क्योंकि तुमने अपने इस पूर्ण नहीं किया है, तुम्हें मैं सुतल लोक में भेजने वाला हूं, नीच लोक में। पर वो सुतल कैसा लोक है? भगवान की कृपा से स्वर्ग लोक से भी ज्यादा ऐश्वर्यशाली सुतल लोक में भगवान ने स्थान दिया बलि को, क्योंकि तूने पूर्ण नहीं किया, तू नीच लोक में चले जा। बलि महाराज कि उनके हृदय में एक ही दुख था, एक ही मतलब चिंता थी कि मैं, उनके डर था कि मैं अपने वचन से पीछे ना हटू, जो मैंने वचन दिया इस ब्राह्मण को, यही उनकी डर थी। और इसीलिए प्रहलाद महाराज की स्मरण करने लगे शक्ति के लिए, बोले आप मुझे वो शक्ति दो कि मैं जिस वचन जो दिया हूं वो मैं पूर्ण करके रखूं। महाजनो ये न गत सपन था, एक क्षण के अंदर वो महाजन बन गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने महाजनों ये नगत सपन था, महाजनों के चरण चिन्हों पर चला, भगवान को प्रसन्न करने के लिए सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हो गए। प्रहलाद महाराज ने भगवान का गुणगान किया, वामन देव का, ब्रह्मा जी ने स्तुति की, विंध्यावली ने स्तुति की, और सब लोग मांग रहे थे कि प्रभु इतना बहुत बहुत आपने सजा दे दिया, छोड़ दो इसे कृपया। क्या किया बेचारा? कुछ नहीं किया, एक वचन दिया था बस, और दे भी दिया आपको, हां भी बोला, कृपया आप इसका। प्रहलाद महाराज कहने लगे प्रभु आपने जो कृपा दिखाया है वो महा बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि समझ गए तो खास कृपा है, भगवान ने वैयक्तिक रूप से उसको कृपा दे रहे हैं, तो प्रसन्न हुए वो। और तब भगवान कहने लगे, अच्छी तरह से उनको बताया, उनसे प्रसन्न हुए और कहने लगे अभक्त के लिए जो ऐश्वर्य मिलता है वो सबसे खतरनाक है, उसके लिए प्रतिकूल है, पर एक कोई महान भक्त है और वो सुख और समृद्धि मतलब ऐश्वर्यशाली है, बहुत ही ऐश्वर्यशाली महाराज अम्बरीश जैसे, तो समझ लेना खास कृपा मिली है उसको, खास कृपा मिली है और उसका सदुपयोग कर रहा है, तभी उसको ऐश्वर्य देते हैं और भगवान। क्योंकि भगवान कोई भी जो बाधा है भक्तों के हृदय से छीन लेते हैं, कोई भी उसके लिए अनुकूल प्रतिकूल है तो छीन लेते हैं, अगर धन भी हो तो छीन लेते हैं, अगर दे रहे हैं और शुद्ध भक्त है और बहुत ही ऐश्वर्यशाली है तो समझ लेना निश्चित रूप से भगवान ने उसके ऊपर कृपा की है, क्योंकि उसका वो सदुपयोग कर रहा है और वो भगवान की कृपा से हुआ आया हुआ धन है, अपने कर्मों का धन नहीं है। इस तरह से भगवान ने गुणगान किया और तत्पश्चात भगवान ने अपना सुदर्शन कहा कि हे बलि मेरा सुदर्शन हमेशा तुझे संरक्षण करेगा, मतलब कोई भी पूरे ब्रह्मांड में तेरा बाल बांका नहीं कर सकता। कहा जाता है कि एक बार रावण आया था तीनों लोकों को जीतने का प्रयास करने के लिए, रावण आया था सुतल लोक में और बलि महाराज के द्वारपाल के रूप में वामन देव खड़े हैं, वामन देव ने अपने वही अंगूठे से जिसने पूरा नापा था रावण को सिर्फ एक हल्का सा स्पर्श किया, लात मारा, रावण सुतल लोक से उड़ते उड़ते लंका में आके बैठा, उसके बाद उसने कसम खा लिया उस दिशा में देखने का भी नहीं, बस पूरा जीतूंगा पर उधर नहीं जाना कोई भी। यह संरक्षण बलि महाराज को संरक्षण दिया भगवान ने, चक्र मेरा सुदर्शन हमेशा रहेगा और मैं, तुमने मुझे जीत लिया है, तुमने सब कुछ खोकर मुझे जीत लिया है, मैं हमेशा तुम्हारे द्वार पर द्वारपाल बनकर खड़ा रहूंगा, हमेशा तुम मुझे दर्शन कर पाओगे, हमेशा मुझे देख पाओगे तुम। अब बोलिए कौन खोया कौन पाया? फिर भगवान इस तरह से प्रसन्न हो गए ये वचन सुनकर, बलि महाराज प्रहलाद महाराज के साथ सुतल लोक में प्रवेश किए। भगवान ने इंद्र को कहा कि इंद्र वापस हो गया तुम्हारा, तुम्हारी माता की इच्छा पूर्ण है, जाओ और स्वर्ग लोक में निवास करो। तो वामन देव को बोले आप पहले हम पीछे। वामन देव को सामने रखते हुए वो स्वर्गलोक में गए और वामन देव को अपने आसन के बगल में एक आसन पर बैठाकर इंद्र वहां निवास करने लगे। भगवान ने ये सब होने के बाद सबको खुश कर दिए, हो गया अदिति खुश, इंद्र खुश और बलि महाराज भी खुश, प्रहलाद महाराज भी खुश। देखिए एक ही व्यक्ति ऐसा है जो सबको खुश कर सकता है। दो लोगों का झगड़ा में एक को खुश किया तो दूसरा दुखी हो जाता है, पर भगवान ने इस तरह से सुंदर लीला की, सब संतुष्ट। ये केवल भगवान और उनके शुद्ध भक्त कर सकते हैं। तत्पश्चात भगवान शुक्राचार्य की ओर मुड़े। शुक्राचार्य जी, आप तो बहुत कह रहे थे कि आपके शिष्य ने बहुत बड़ी गलती की, आप बताइए इस यज्ञ में बलि महाराज की क्या गलती है, क्या गलती है? और तब ये श्लोक शुक्राचार्य के मुख से निकला है, मंत्रतस तंत्रतस छिद्रम। मंत्र में, तंत्रों में छिद्र हो, कमियां हो, त्रुटियां हो। देश कालार्ह वस्तुतः, देश सही नहीं है, काल सही नहीं है, क्या बोलते हैं, राहु काल आ गया। और वस्तुतः, वस्तु अगर अशुद्ध है, सर्वम करोति निश्छिद्रम अनुसंकीर्तनम तव, कि हां प्रभु, जिस जगह पे आपका संकीर्तन होता है, नाम कीर्तन होता है, उस जगह पे मंत्रतस तंत्रतस छिद्रम देश कालार्ह वस्तुतः, देश काल वस्तु मंत्र तंत्र या जो भी अशुद्ध है, जो भी त्रुटियां हो गया, जो भी कमियां आ गई हो, सब निश्चिद्रम, सर्वम करोति निश्चिद्रम। और इसीलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, खास करके इस कलयुग में यह सबसे शक्तिशाली तरीका है कि हम हरिनाम लेते रहे, क्योंकि जहां हरिनाम हो रहा है निश्चित रूप से सब मंगलमय हो जाता है। वो देश, वो काल, वो पात्र, जो वो वस्तु, जो भी है, सब कुछ पवित्र हो जाता है जब भगवान का अनुसंकीर्तनम, महाजन के बताए हुए अनुसार संकीर्तन, संग भगवान का नाम संकीर्तन करना। तो इस तरह से ये सुंदर कथा के द्वारा हम देखते हैं कि किस तरह से बलि महाराज, क्योंकि वो हालांकि असुर योनि में थे, पर क्योंकि महाजनों के पद चिन्हों पे चले, भगवान को प्रसन्न करने के लिए सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम रजा, जो भगवान गीता में कहे, उसका पालन करने के कारण बलि महाराज भी 12 महाजनों में आज एक माने जाते हैं। स्वयंभु नारद शंभु कुमारो कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलि ही वयासकी वयम, 12 महाजनों में बलि महाराज का नाम भी एक आता है। तो बलि महाराज से हम आज प्रार्थना कर सकते हैं, वामन देव की कृपा हमें भी मिले और हम भी जो हमने वचन दिया है भगवान को, गुरु को, इस वचन को जो भक्तों के सामने, अग्नि के सामने, परंपरा के सामने, भगवान के सामने वचन लिया है कि हम भक्ति करेंगे भगवान, 16 माला करेंगे, 4 नियमों का पालन करेंगे, दासानुदास बनकर सेवा करेंगे, बहुत बड़ा वचन लिया है हमने। एक ब्राह्मण को दिया वचन नहीं, भगवान को दिया हुआ वचन, गुरु को दिया हुआ वचन, कितनी कठोरता से, कितनी सख्तता से, कितने गंभीरता से इस वचन को लेना चाहिए। बलि महाराज से हम प्रेरणा ले सकते हैं और वामन देव की कृपा आज याचना कर सकते हैं कि उनकी कृपा बनी रहे और इस तरह से भले ही संसार में कुछ भी खो लिए इस वचन को रखने में, इस वचन को रखने के लिए शायद बहुत चीज हम खो लेंगे पर सचमुच में पाएंगे ही पाएंगे, कुछ खोएंगे नहीं, क्योंकि भगवान उस व्यक्ति के वश में आ जाते हैं इस वचन को रखने के लिए। श्रील वामन देव की जय, श्रील बलि महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील जीव गोस्वामी पाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदी।